नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने चीन की स्मार्टफोन कंपनी वीवो को अपने विभिन्न बैंक खातों से लेन देन की अनुमति दे दी है। ईडी ने धन शोधन रोधक जांच के सिलसिले में इन खातों पर रोक लगाई थी। हालांकि इसके लिए कंपनी को एक सप्ताह के भीतर प्रवर्तन निदेशालय को 950 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कंपनी को ईडी को बाहर भेजे गए धन की जानकारी देने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने वीवो के विभिन्न बैंक खातों पर रोक लगाने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध करने वाली कंपनी की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस भी जारी किया। ईडी का कहना है कि अपराध के जरिए अनुमानित कमाई करीब 1200 करोड़ रुपए है। सोशल मीडिया मंच ट्विटर ने कहा है कि उसने अरबपति उद्योगपति एलन मस्क पर 44 अरब डॉलर में कंपनी का अधिग्रहण पूरा करने का दबाव बनाने की खातिर मुकदमा किया है। मस्क ने फर्जी खातों की सही जानकारी नहीं देने का आरोप लगाते हुए ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदने के समझौते को रद्द करने की घोषणा की थी। वहीं दूसरी ओर ट्विटर ने कहा कि वह इस सौदे को बरकरार रखने के लिए टेस्ला के सीईओ मस्क पर मुकदमा करेगी। ट्विटर के निदेशक मंडल के अध्यक्ष ब्रेट टेलर ने मंगलवार को ट्वीट करके बताया कि एलन मस्क को उनके अनुबंध दायित्वों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी में मुकदमा दायर किया गया है। बिहार के दो जिलों में खेतों एवं फसलों में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी मिलने से पर्यावरणविदों की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि इनकी मौजूदगी कई बीमारियों को जन्म दे सकती है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अशोक कुमार घोष ने पीटीआई भाषा से कहा कि हाल के अध्ययनों से बिहार के दो जिलों भागलपुर और बक्सर में खेतों के साथ साथ फसलों में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति का पता चला है। ये गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन दोनों जिलों में कृषि भूमि में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति का आंकलन करने के लिए एक अध्ययन किया जाएगा। माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से कम व्यास की प्लास्टिक सामग्री है, जिन्हें पर्यावरण में प्लास्टिक प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। पर्यावरण में जमा होने वाले प्लास्टिक कचड़े को भौतिक, रासायनिक व जैविक क्रिया के तहत छोटे छोटे टुकड़ों और कणों में तोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे माइक्रोप्लास्टिक का निर्माण होता है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने चीन के स्मार्टफोन कंपनी ओपो द्वारा लगभग 4389 करोड़ रुपए की सीमा शुल्क चोरी का पता लगाया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में ये जानकारी देते हुए बताया कि आयात की गलत जानकारी देकर स्मार्टफोन विनिर्माता कंपनी ने सीमा शुल्क में हेराफेरी की। चीन की ओपो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ओपो, वन प्लस और रियलमी ब्रांड नाम से घरेलू बाजार में अपने स्मार्टफोन बेचती है। मंत्रालय के अनुसार ग्वांगडोंग ओपो मोबाइल टेलीकॉम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी ओपो मोबाइल्स इंडिया की जांच के दौरान DRI ने करीब 4389 करोड़ रुपए की सीमा शुल्क चोरी का पता लगाया है। ओपो इंडिया पूरे भारत में विनिर्माण, कलपुर्जे जोड़ने, खुदरा व्यापार, मोबाइल हैंडसेट और चार्जर, पावर बैंक जैसे संबंधित सामानों के वितरण का कारोबार करती है। DRI ने जांच के दौरान ओपो इंडिया के कार्यालय परिसरों और इसके प्रमुख प्रबंधन कर्मचारियों के आवासों की तलाशी ली। निदेशालय को तलाशी के दौरान ओपो इंडिया द्वारा मोबाइल फोन के निर्माण में उपयोग के लिए आयात की गई कुछ वस्तुओं के विवरण में जानबूझकर गलत जानकारी देने संबंधी संकेत मिले। मंत्रालय ने कहा, गलत जानकारी देकर ओपो इंडिया ने 2981 करोड़ रुपए की अनुचित शुल्क छूट लाभ का गलत लाभ उठाया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चाय, कॉफी, मसाला और रबड़ जैसे जुड़े पुराने कानूनों को निरस्त करने तथा नए विधेयक लाने का मकसद कारोबार सुगमता को बढ़ाना तथा छोटे किसानों की मदद करना है। वाणिज्य मंत्रालय ने मसाला संवर्धन और विकास विधेयक 2022, रबड़ संवर्धन और विकास विधेयक 2022, कॉफी संवर्धन और विकास विधेयक 2022 और चाय संवर्धन और विकास विधेयक 2022 पर संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श किया है। इसका उद्देश्य नए विधेयकों को लेकर उनकी चिंताओं को दूर करना था। वाणिज्य विभाग ने कहा कि वह चाय अधिनियम 1953, मसाला बोर्ड अधिनियम 1986, रबड़ अधिनियम 1947 और कॉफी अधिनियम 1942 को निरस्त करने का प्रस्ताव कर रहा है। नए कानून लाने के उद्देश्य के बारे में पूछे जाने पर गोयल ने पीटीआई भाषा से कहा, ये बहुत पुराने कानून हैं। नए कानून बनाने के पीछे सोच उन्हें सरल और कारोबार के लिहाज से सुगम बनाना है। साथ ही ये सुनिश्चित करना है कि कॉफी और चाय क्षेत्र से जुड़े लोगों को अधिक अनुपालन बोझ का सामना न करना पड़े। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने टोरंटो में अपने 5वें वैश्विक अनुसंधान और सह नवाचार केंद्र TCS स्पेस पोर्ट टोरंटो का उद्घाटन किया। कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि 16,000 वर्ग फुट में फैला स्पेस पोर्ट टोरंटो कंपनियों को नवीनतम तकनीकों तक पहुंच प्रदान करता है। इसके साथ ही TCS अनुसंधान प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप, VC उद्यमियों और टोरंटो विश्वविद्यालय जैसे अकादमिक संस्थानों, न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग, एम्स्टर्डम और टोक्यो में स्पेस पोर्ट्स के TCS नेटवर्क के जरिए अलग सोच भी प्रदान करता है। TCS के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी अनंत कृष्णन ने कहा, टोरंटो में स्पेस पोर्ट की स्थापना उत्तरी अमेरिका के तेजी से बढ़ते तकनीकी बाजार कनाडा के लिए TCS की दीर्घकालिक रणनीति योजना का हिस्सा है। कृष्णन ने कहा कि दुनिया भर में TCS स्पेस पोर्ट केंद्रों में 4,000 से अधिक शोधकर्ता और नवो उन्मेषक, 2,300 से अधिक स्टार्टअप साझेदार, 30 से अधिक नवाचार प्रयोगशालाएं और 67 अकादमिक साझेदार शामिल हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।